नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
ओ प्यारी सलीम दिखती है मुझे, वो प्यारी सलीम दिखती है मुझे,
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने उन सभी मित्रों का जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर अपने जीवन में पाए उन आशीषों को हम तक लिख भेजते हैं। इतना ही नहीं, आप में से कई अपनी गवाहियों को हम तक पहुँचाते हैं, इसलिए हम सब आपके आभारी हैं। मेरे मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं और अपनी गवाही लोगों तक पहुंचाते रहें। तो आपको मालूम है कि हम सब इन दिनों इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने अध्याय 9 तक का अध्ययन किया है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 10 से अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है प्रोत्साहन। तो आइए हम सब आगे बढ़ें, लेकिन इससे पहले प्रार्थना करें और परमेश्वर से अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे सामर्थ्य और जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन करें। इस समय जब हम फिर से इब्रानियों की पत्री से अध्ययन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। हम सब से आप अपने वचन के द्वारा बोले और बातचीत करें, हमें सिखाएं, समझाएं, ताकि हम आपके वचन के अनुसार चल सकें। इस समय हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में निराश और परेशान हैं, यहाँ तक कि बीमार अवस्था में हैं। पिताजी, आप उन पर कृपा दृष्टि करें। आज जब वे आपके वचन को सुन रहे हैं, आप उनसे बातचीत करें, उन्हें छुएं और चंगाई दें, शांति और आनंद दें। आज हम सबको आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम सब इब्रानियों की पत्री उसके अध्याय 10 से अध्ययन को आरंभ करेंगे जिसका विषय है प्रोत्साहन। इस पत्री का लेखक उत्तम बलिदान के विषय अपनी चर्चा को चालू रखता है, अर्थात जारी रखता है। आइए हम पढ़ें इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका एक पद। लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अध्याय 9 के अंत में लेखक कहता है कि यदि प्रभु यीशु पहले आगमन में अपनी मृत्यु द्वारा पाप मोचन से चूक गया तो उसके दूसरे आगमन में न्याय के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। मेरे मित्रों, यदि आप प्रभु यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण नहीं करते तो आपका अंतिम संस्कार सबसे अधिक दुखदायी होगा। मैंने बहुत सी दफन क्रियाओं में हिस्सा लिया है और उद्धार रहित मनुष्यों के परिवारों में ऐसा दुख अन्य कहीं नहीं देखा। एक बार एक शराबी स्त्री का पति मर गया। उसके अंतिम संस्कार में सुसमाचार सुनाया गया। बाद में वह स्त्री मेरे पास आकर पूछने लगी कि क्या उसके लिए कोई आशा है। मैंने कहा, आपके लिए आशा है परंतु आपके पति के लिए नहीं, क्योंकि वह निंदा करने वाला मनुष्य था और वह मुझसे कहता था कि उसे न तो कलीसिया से, न ही प्रभु यीशु से और न ही किसी प्रकार की मसीही बातों से कोई सरोकार है। उसके लिए न्याय की अपेक्षा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्योंकि शब्द का अर्थ है कि लेखक पाप के लिए प्रभु यीशु के बलिदान का विषय जारी रखता है। लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं। व्यवस्था ने एक अच्छा काम यह किया है कि वह इसराइल की शिक्षा के लिए एक प्रतिरूप है, क्योंकि परमेश्वर ने इसराइल को ऐसी विस्तार पूर्वक शिक्षा दी कि उनका कठोर न्याय किया गया। देह में रहते समय प्रभु यीशु ने कहा था, लुका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 34 पद में, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तूने यह ना चाहा। मेरे मित्रों, यदि आपको यह विश्वास ना हो कि परमेश्वर ने उन्हें कठोर दंड दिया तो यरूशलेम की सड़कों पर विचरण करें। आप जाएं, वहां हर जगह मलवा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उस नगर को दंड दिया गया है। ओह, प्रभु ने कैसा प्रयास किया कि अपने लोगों को अपने निकट ले आए। उसने उन्हें पुराना नियम, अपना वचन दिया जिसमें मिलाप वाले तंबू के अनुष्ठान स्पष्ट व्यक्त किए गए थे, परंतु वे नहीं सुने। आज हमारे सामने भी नया नियम है, परमेश्वर का वचन है, फिर भी कई लोग इसे अनदेखा करते हैं। उन्हें जो ईश्वरीय प्रकाशन प्राप्त था उसकी तुलना अंधकारवासी अन्य जातियों से कीजिए। जब सुसमाचार उन तक पहुंचा तो अनेकों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जी हाँ, मैं धन्यवाद करता हूं कि उस प्रचारक का जिसने हमारे पूर्वजों में सुसमाचार सुनाया। परंतु इसराइल के पास परमेश्वर का वचन, पुराना नियम था, जो क ख ग की पुस्तक थी और आज भी है। यही कारण है कि अधिकांश जन इसके अर्थ से चूक जाते हैं। धर्मशास्त्रियों ने जब इसका अवलोकन किया तो गहराइयों को नापा, परंतु यह वास्तव में एक सुबोध पुस्तक है जिसमें परमेश्वर हम अकिंचन मनुष्यों को यह समझाना चाहता है कि प्रभु यीशु हमारे लिए मरा। जी हाँ, आपके लिए और मेरे लिए वो मरा। सीधी और सरल बात है। अब मैं एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ध्यान रखें कि व्यवस्था मिलाप वाले तंबू और बलिदानों के निर्देशों से पूर्ण थी। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को उसके अनुष्ठानों से अलग करना चाहें तो वह सर्वथा अनुचित होगा। यदि आप व्यवस्था पालन करना चाहें और 10 आज्ञाओं का पालन करना चाहें तो अपने लिए एक मिलाप वाला तंबू बना लें और भेड़ बकरी पालन करना आरंभ कर दें, क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता होगी। परंतु मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ने इसका अंत कर दिया है और अब हम एक ऊंचे स्तर पर हैं। परमेश्वर आपके जीवन को आनंद से भर देना चाहता है। व्यवस्था ने तो ऐसा कभी नहीं किया। व्यवस्था देते समय गर्जन और बिजली की चमक थी तथा अनेक जन मारे भी गए थे, परंतु प्रभु यीशु जब आया तब मनुष्य को जीवन मिला और मृत्यु उसके पास से भाग गई। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। लिखा है, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। अर्थात यदि पशु बलि से पाप मोचन होता तो एक ही बलि बहुत थी। यह बड़ी रोचक बात है कि यीशु के मरणोपरांत अधिक समय नहीं लगा कि मंदिर ध्वंस किया गया और आज तक इसराइल मंदिर का पुनः निर्माण नहीं कर पाया है। पवित्र शहर होली सिटी होटल में मंदिर का एक नमूना उन्होंने सजा कर रखा है और ऐसा लगता भी नहीं कि निकट भविष्य में वे मंदिर बना पाएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्रभु यीशु स्वयं बलि चढ़ गया तो मंदिर का प्रयोजन ही समाप्त हो गया। मेरे मित्रों, आज इसराइली बलिदान नहीं चढ़ाते हैं। हमारी कलीसिया से कुछ लोग यरूशलेम घूमने के लिए गए और उन्होंने बताया कि एक अति प्रसन्नचित गाइड से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाल सफेद थे। उसने उन्हें बताया कि उसके बाल 19 वर्ष की आयु में ही सफेद हो गए थे। इसका कारण था कि उसके माता पिता भाई बहन रूस में मारे गए थे। जब वह उन्हें उस होटल में मंदिर का नमूना दिखा रहा था तब उन्होंने उससे पूछा, पीतल की वेदी इसमें कहाँ है। उसने बड़े आश्चर्य से उन्हें देखा और कहा, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। आज हमारा धर्म नैतिकता का है, परंतु मेरे मित्रों, लहू के बलिदान की आवश्यकता थी कि मानव जाति को पापों की क्षमा प्राप्त हो। आगे लिखा है, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। यदि उपासकों का शोधन हो जाता तो उनमें पापी विवेक नहीं रह जाता, उनमें पाप का भाव और विवेक ही नहीं होता। इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, अतः बलिदान इसलिए थे कि इसराइल को बोध करवाते रहें कि बलि चढ़ाना अपूर्ण कार्य है, अन्यथा वे उसे बार बार क्यों दोहराते। बलिदान तो केवल रूपरेखा थे और वह भी अस्पष्ट। वे बलिदान मात्र प्रतीकात्मक थे, न कि मूल। मेरे मित्रों, प्रति छाया से बात नहीं बनती है। आप मकान की छाया में नहीं रह सकते, आपको वास्तविक मकान की आवश्यकता होती है। यदि बलिदानों का अर्थ सिद्ध हो जाता तो फिर बलिदान रुक जाते। जैसे एक रोगी जब चंगा हो जाए तो उसे दवाइयों की क्या आवश्यकता। यदि वह दवाइयां खा रहा है तो इसका अर्थ है कि वह अब भी रोगी है। इसी प्रकार यदि मनुष्य बार बार बलि चढ़ाता है तो इसका अर्थ है कि उसे पाप मुक्ति नहीं प्राप्त हुई है। वे प्रतिवर्ष प्रायश्चित दिवस मनाते थे। इसका अर्थ क्या है? यीशु ने इस समस्या का समाधान कर दिया जब उसने गुलगुथा पर पुकारा, पूरा हुआ। अब बलिदान की आवश्यकता नहीं है। लेखक कहेगा कि आज बलि चढ़ाने का अर्थ है प्रभु यीशु के लहू को पांव तले रौंदना। इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय के 4 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। मेरे प्रियो, यहोना कहता है कि प्रभु यीशु परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठाकर ले जाता है। यहोना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 29 पद में, पशु बलि मनुष्य के पाप को प्रभु के आने तक ढांक कर रखती थी कि वह आकर पापों को उठा ले जाए। अब देखिए, यह एक महान गद्यांश है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 5 से 10 पद में, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वह कहता है, ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। मेरे प्रियो, मैं इस गद्यांश को अत्यधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए निर्गमन की पुस्तक से 2 संदर्भ देना चाहता हूँ। अध्याय 19 में व्यवस्था दिए जाने की तैयारी का वर्णन है और अध्याय 20 में 10 आज्ञाओं का दिया जाना है। इसके बाद परमेश्वर बलि चढ़ाने के अनुग्रहकारी निर्देश देता है, जिसमें व्यवस्था के साथ वेदी का भी उल्लेख किया गया है। तदुपरांत अध्याय 21 में बड़ी ही असंगत बात आती है जो बाइबल का एक अति उत्तम संदर्भ है। व्यवस्था देने के बाद परमेश्वर मूसा से कहता है, निर्गमन की पुस्तक 21 अध्याय उसके 1 से 6 पद में, फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वे ये हैं, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंत मेंत चला जाए। यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसको बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हो तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहें और वह अकेला चला जाए। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। मेरे मित्रों, उस युग में यदि आप किसी पुरुष के कान में छेद देखें, तो आप समझ जाते कि उसे एक पत्नी दी गई है और उसने अपनी पत्नी की स्थायी सेवा की कीमत चुकाई है। यह निश्चय ही एक अद्भुत एवं आकर्षक नियम था। इसका अर्थ क्या है? हम इसका अर्थ देखें भजन संहिता 40 उसके 6 और 7 पद में, जहां पर हम पढ़ते हैं, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। यह इब्रानियों की पत्री में संदर्भित है और प्रभु यीशु के प्रसंग में है। यह धर्म शास्त्र के अति सुंदर रूपकों में से एक है। प्रभु यीशु इस संसार में मानव रूप में बड़ा हुआ और 30 वर्ष की आयु में उसने अपनी सेवा आरंभ की। अपनी सेवा के अंत में वह यह कहने के योग्य था, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:46 पद में। मेरे प्रियो, वह पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक और पापियों से अलग था। वह जब चाहता तब इस संसार से कूच कर सकता था। वह इस पृथ्वी को पाप में छोड़कर स्वर्ग को जा सकता था, परंतु हमसे प्रेम करता था। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। उसके कान तो नहीं छेदे गए, परंतु उसे मानव देह ही दी गई थी। क्यों? क्रूस पर जान देने के लिए। इब्रानियों के पत्र 10:10 पद में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार व्यवस्था में एक दास अपने स्वामी का आजीवन दास बन सकता था कि अपनी पत्नी के साथ रहे, उसी प्रकार प्रभु यीशु को भी एक दुल्हन दी गई, जिसे हम कलीसिया कह सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:9 पद में प्रभु यीशु अपने पिता से प्रार्थना करता है और कहता है कि वे उसके हैं और परमेश्वर ने उन्हें उसे दिया है। प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने प्राण की आहुति चढ़ा दी, परंतु अंतर यह है कि वह दासत्व में नहीं रहा, वह स्वर्ग में सर्वशक्तिमान महामहिमन के दाहिने हाथ जा बैठा और एक दिन वह हमें भी पाप के दासत्व से निकालकर अपने साथ ले जाएगा। यह काम केवल वही कर सकता है। मेरे मित्रों, धर्मशास्त्र का यह भाग मसीह यीशु का कैसा अद्भुत चित्रण प्रकट करता है। हम इब्रानियों की पत्री 10:11 पद में पढ़ते हैं, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। बलि चढ़ाने से पाप केवल ढांके जा सकते थे प्रायश्चित के दिन, परंतु उनका उठाया जाना संभव नहीं था। बलि चढ़ाना एक प्रकार से हमारे लिए स्मरण रखने का कारण था कि हम पापी हैं और पाप की समस्या का समाधान होना अवश्य है। इब्रानियों के पत्र 10:12 पद में लिखा है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। वह बैठ क्यों गया? क्या वह थक गया था? क्या वह और काम करना नहीं चाहता था? जी नहीं, वह बैठ गया क्योंकि उसका काम संपन्न हो गया था, पूरा हो गया था। पापों के लिए सदाकालीन एक ही बलिदान और वह पूरा हो चुका था। इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, और उसी समय से इसकी बाट जो रहे हैं कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु प्रतीक्षा कर रहा है कि अभी औरों का भी उद्धार होना है। हम तो प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यीशु आ, परंतु वह कहता है नहीं, अभी नहीं, हम रुकेंगे क्योंकि मैं कुछ औरों का भी उद्धार करना चाहता हूं। मेरे मित्रों, वह आपका भी उद्धार करना चाहता है, वह आपको अवसर दे रहा है। यदि आपने उद्धार नहीं पाया है तो उसके पास आ जाएं। भजन संहिता 110 उसके 1 पद में लिखा है, मेरे प्रभु यहोवा की यह वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। यह प्रभु यीशु के पृथ्वी पर पुनः आगमन के संदर्भ में है, परंतु इस बीच वह मानव जाति में से और मनुष्यों के उद्धार पाने की बाट जो रहा है। इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय उसके 14 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। मेरे प्रिय मित्रों, एक ही बलिदान ने वह कर दिखाया जो असंख्य बलिदान नहीं कर पाए थे। यदि प्रभु यीशु आपके उद्धार और रक्षा में अक्षम है तो परमेश्वर के पास दूसरा मार्ग नहीं है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है कि आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। अर्थात सिर्फ यीशु इस पृथ्वी पर आया जो हमारे पापों के बदले में बलिदान हुआ, मर गया, और इसलिए मुझे और आपको इस वर्तमान समय में किसी भी प्रकार की चढ़ावे या बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह बलिदान प्रभु यीशु ने स्वयं दे दिया। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने जीवन में उन बलिदानों के महत्वों को समझें और यह जान लें कि प्रभु यीशु के द्वारा ही उद्धार है और किसी के द्वारा नहीं। यदि हम किसी प्रकार के गलतफहमी में हैं तो इस बात को सीख लें, जान लें और प्रभु के चरणों में आ जाएं, क्योंकि वही आपके पापों से आपको मोक्ष, शांति और मुक्ति दे सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आप अवश्य ही प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है hindittb@twr.in। नमस्कार।
जो क्रूस पे कुर्बान मर्ज़ा तुझो उसका